نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ذکر کر لیتے ہیں, ذکر کی برکت سے ہمت ملتی ہے, طاقت ملتی ہے, روحانی قوت ملتی ہے, اور اس روحانی قوت کو استعمال بھی کرنا پڑتا ہے. بیٹھے بیٹھے نہیں ہوتا, کچھ کام کرنے سے ہوتے ہیں. انسان دنیا کے کام بھی کمانے کے لیے نکلتا ہے ظاہری طور پہ. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ویسے بھی رزق عطا فرما دیتا ہے, تو ہر کام کرنے سے ہوتے ہیں. تقویٰ بھی کرنے سے ہوگا, عمل جو ہے کرنے سے ہوتا ہے. اپنی انا کو مٹانے سے اللہ تعالیٰ ملتے ہیں. جو اپنی انا کو نہیں مٹائے گا اللہ نہیں ملے گا اس کو. اپنی انانیت جب تک ختم نہیں کریں گے فرعونیت اپنی. حضرت یہ بات صبح فرمائی, بڑا فائدہ ہوا صبح کے بیان میں 11 بجے, تو مجھے بڑا فائدہ ہوا. اپنی اصلاح, اپنی انانیت جب تک کوئی ختم نہیں کرے گا اپنی فرعونیت, تو داڑھی ٹوپی کی شکل میں شیطان رہے گا. یہ اکثر میرا تو یہی بیان ہوا پچھلے سفر میں بھی کہ ہمیں تو ہمارے بزرگ تو بننا سکھایا نہیں جاتے, ہمارے عزت تو انسان بننا سکھاتے ہیں. یہ جانور پناہ چھوڑ دو, انسانیت میں آ جاؤ. جانور کہے گا مطلب کھایا پیا, ایکسپورٹ امپورٹ کیا, ایکسپورٹ کر لیا. اور جو انسان ہوتا ہے وہ کھا پی کے اللہ بھی فرمبرداری کرتا ہے. پچھلے سفر کی ایک بات رہ گئی تھی, جب شیخ الحدیث صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی سکر کے, تو انہوں نے ایک نصیحت فرمائی تھی. وہ میں نصیحت میں آج پڑھ رہا تھا, اس میں مل بھی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو رہی اور فرمانے اپنی بیویوں کے بارے میں خبردار رہنا, کیونکہ مسئلے تمہارے پاس قیدی کے ہیں. تو میں آخری وقت میں یہ دعا نصیحت, تو میں اس میں آج کل بہت کوتاہی پائی جاتی ہے. میں نے کہا اس کو پڑھ کے بھی سنا دیں گے کہ آخر وقت میں یہ بات فرما رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو بات ہے نا, کہ اپنی بیویوں کے بارے میں خبردار ہیں. آپ بھی صاحب سن ہی رہے تھے, کتنی زبردست نصیحت فرمائی. اصل تو حضرت شاہ فیروز نے صاحب یہی فرمایا تھے, اصل تو عمل ہے. کتنا ہی کوئی شیخ کی ٹانگ دبا لے, شیخ کے ساتھ رہے, سفر میں ساتھ رہے, سموسے پاپڑ اڑائے, مگر اگر اپنی اصلاح نہیں کرواتا تو وہیں کا وہیں کھولو کے بیل کی طرح وہیں کا وہیں رہے گا. شیخ کی شفقت کا غیر وہ فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, کتنا ہی کوئی چھپ کے گناہ کرے, اپنے حقوق میں کوتاہی کرے, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. جو شریعت نے حقوق رکھے اپنے نفس پہ جبر کر کے ان حقوق کو ادا کرے. جانور پناہ کیوں کرتا ہے؟ تو بڑی عجیب بات ہے. حدیث شریف میں باقاعدہ الفاظ ایسے عجیب ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ, میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ خیر اور بھلائی کے ساتھ پیش آؤ, کیونکہ تمہارے پاس مثل قیدی کے ہیں. میں پڑھا تو مجھے حیرانی ہوئی بہت. اللہ اکبر, یہ تو ابھی ہم نے حضرت والا سے بھی سنی ہوئی تھی, شیخ الحدیث صاحب سے سکر میں سنی, اور پھر ہم نے بھی سنی. بے جا اور تکبر ہے. اس لیے شاہ فیروز احمد صاحب نے بڑی اچھی بات فرمائی, تم کتنے ہی صبر کر لو, کچھ بھی کر لو, یہاں پہ آیا کرو میرے پاس. اب وہ وقت ابھی یہاں لگا ہوں, جب تک میرے دل میں نہیں آئے گا سفر پہ آپ نہیں جائیں. اپنے متعلقین سے بھی کہتے یہاں پر آئیں, آنے والے کو زیادہ فائدہ ہوگا. اور تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد ارادہ ہے حضرت کے وقت لگانے کا. جو سفر وقت جانے کا تھا وہ حضرت کے پاس لگاؤں گا. اس کا میسج بھی کروائیں گے, ہمارے احباب بھی وہاں آ جائیں تاکہ حضرت بھی خوش ہو جائیں. اپنے شیخ کی کچھ لاش کو رکھوانی چاہیے, اس میں ان کو بھی فائدہ ہوگا. جب شیخ کی ڈائریکٹ فائرنگ ہوگی شیخ اصلاح فرمائیں گے, دیکھیں گے کتنے خطوط آ رہے ہیں, کیسے ای میلز آتے ہیں ان کے پاس. جب بیٹھیں گے ان کی روحانی پرواز دیکھیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا. سفر میں تو اتنا پتہ نہیں چلتا, دھڑا دھڑ بیانات ہوتے رہتے ہیں, اصلاح کا بھی دوستوں کو موقع نہیں ملتا. مگر جب آئیں گے تو فائدہ ہوگا, اصلاح کے فکر نصیب ہوگی, اپنی اصلاح کروائیں گے. جانوروں والی زندگی تھوڑی گزاریں گے. جو چاہا منہ میں آیا بک دیا, اللہ معاف فرمائے. گالی دینا کتنا بڑا گناہ ہے, اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوتا ہے. بہت بڑی بے رخی اور بہت بڑی بے وفائی ہے, اللہ معاف فرمائے. ایسے مرید تو خانقاہ سے حیدرآباد میں ہی بیان ہوتا, نکال دینے قابل ہے جس سے لوگ تنگ آئے. مدنی مسجد میں لڑائی لڑ رہے ہیں مرید ہیں ہمارے, اور بوڑھے سے لڑائی لڑ رہے ہیں, پوری مسجد میں شور مچایا ہے. میں نے وہ آئے ہوئے تھے مرید, وہ میں نے کہا ہم ڈرتے ہی کسی سے. حضرت کا بھی طریقہ تھا, کوئی جائے تو جائے, کوئی آئے تو آئے. ہمارے پاس ہمیں کوئی مریدوں کی لائن تھوڑی لگوانی ہے. ہمت کریں, مگر جانا نہیں چاہیے اس نالائق کو, بلکہ اصلاح کروانی چاہیے. ان پہ بڑا فرق پڑا ماشاء اللہ. ان کی خبریں مل رہی ہیں کہ اپنی اصلاح کی فکر کر رہے ہوں, ان کے جو معاملات کی خرابی تھی وہ صحیح کر رہے ہوں. اللہ تعالیٰ توفیق دے. شیخ کو نفرت تھوڑی کرتا, وہ تو چاہتا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تصوف کو تو حاصل ہی ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. کیوں تکلیف ہم لوگ پہنچاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بہرحال مجھے بھی توفیق دے, اپنی انانیت کو فنا کریں, شیطان پناہ نکالیں اپنے اندر سے, اور تقوی والی زندگی گزاریں. اسی میں سکون ہے. تقوی کس چیز کا نام ہے؟ حرام خواہشات کا خون کر دینا, اس سے بھی تو حرام خواہش ہے. غصے کو پیتے نہیں ہیں اور پھر پورے خاندان والوں کا ناک میں دم کیا ہوا ہوتا ہے. داڑھی ٹوپی کے ساتھ جانور بنے, بتائیے. हजरत ने सुबह बड़ी अच्छी बात फरमाती है, दिल से लगती है कि हम लोग समझते हैं दाढ़ी टोपी और बयान का नाम दीन है। ये सुबह फरमाई है, दाढ़ी टोपी और बयान कर लिया ये दीन है, ये दीन नहीं। दीन तो बहुत बड़ी चीज़ है। अभी हम वहीं पे आसिफ कमाल साहब के थे तो मैंने एक किताब उठाई, उसमें अजीब बात लिखी हुई थी, लोगों से मिलना जुलना मुआशरत ये भी दीन का हिस्सा है, फिर लोगों से अच्छे अखलाक से रहना आधा दीन है। ये सब बातें हमारे बड़ों ने सिखाई, अखलाकियत कहाँ चले जाते हैं हमारे, सिर्फ शेख के साथ बस मुस्कुराना और बीवी बच्चों के साथ खानदान वालों के साथ। सास ससुर का हक नहीं है, माँ बाप का हक नहीं है, सबके हक हमारे शेख सिखाते हैं, औलाद का हक नहीं है, बीवी बच्चों का हक नहीं है। सबसे ज़्यादा करीब कौन है, शादी के बाद बीवी है और शादी से पहले माँ बाप है, फिर सबके हक अलग अलग हैं। बीवी के जिम्मे क्या हक हैं, पिछले शौहर की शादी हो गई अब हम भी कल गए थे, सास ससुर को मैं वाली साहब को अबू कहता हूँ, उनके हक हूक रखें, कितना ही वो हम पे कुछ भी कह रहे हैं हमारे जिम्मे है। हमारे हजरत ने बड़ी अच्छी बात फरमाई कि वन में ट्रैफिक चलाए इंसान, हर वक्त किसी के ऐब ना गनाते हैं, ये किया था वो किया था वो किया, अरे तूने क्या किया था ये भी तो देखें, आपने क्या क्या गड़बड़े की हैं। इस तरह तो सब मैं आप ऐब निकालें किसी के, मैं निकालूं ये निकालें, हर कोई ऐब ही निकालता रहेगा। इसमें बड़ी अच्छी एक नसीहत लिखी है, सब मोटी मोटी किताबें आज लाया हूं तो उसमें ये नसीहत बड़ी अच्छी है क्या टीशु। एक बुजुर्ग थे, वो कहते थे कि मैं किसी के ऐब नहीं निकालता, मैं हमेशा लोगों की अच्छाइयां देखता हूँ। कितनी अच्छी बात है, अच्छाई कोई नजर नहीं आती, हदीस में तो साफ अल्फाज है, कुरान बात में आता है, कुछ बातें तुम्हें बीवियों की बुरी लगती हैं मगर उससे खैरन कसीरन भी कितनी सारी हैं, औलादे नेक मिल गई, खाना पका के दे रही है, जिंदगी भर की साथी है। और मशरकी औरतें तो बहुत बावफा होती हैं, भले चिक चिक करती हैं मगर है तो तुम्हारी बीवी ना, उससे तुम क्यों चिक चिक करते हो। हर वक्त बोलना है लानत हो तुम पर, ये कोई तरीका, ये हमारे बड़ों ने सिखाया, ये लानत कहाँ से सीखी है बताएं। हंसने की बात है, रोने की बात है, खून के आंसू रोना चाहिए। अब शेख कहता है, ऐसे बेटा कोई नालायकी करता है तो शेख कहता है, बेटे से कहता है निकल जाओ यहां से टांगे तोड़ दूंगा, तो मतलब ये थोड़ी निकल जाए वो टांगे तोड़ देंगे भाई गैरत की बात होती है कि तुमने कैसी हरकत कर दी। ख्वाजा साहब से कहा था आप निकल जाए तो बाहर उन्हें सड़क बिस्तर लगा दिया था। तो हजरत भी फरमाते हैं जो पुराने लोग ऐसी कोताहियां करते हैं तो बहुत दिल दुखता है, किससे कहें इंसान क्या कहें, हजरत वाला से कहें, उससे कहेंगे तो वो फौरन फायर मार देगा। समझते हैं तलाक इसलिए दी हुई है कि बस तलाक दे दो, हर वक्त तलाक की धमकियां दे रहे हैं, ये हमारे बड़ों का तरीका है। आप मुझे बताएं क्या हजरत शाह फिरोज अहमद साहब हमारे हजरत वाला और कैसे कैसे उनके अखलाक थे बीवी के साथ, हर वक्त तलाक की धमकियां देना, तलाक दे दूंगा तलाक दे दूंगा, शेख तुम्हें तलाक दे देगा फिर ये कैसी बातें उल्टी सीधी, मतलब ये है कि शेख जो है आपकी खिंचाई कर देगा उस वक्त फिर नानी याद आएंगी, शेख क्या खिंचाई करेगा, अल्लाह ताला के कितना। अभी मैं कल ही तफसीर पढ़ रहा था, कुरान पाक में एक लफ्ज आया हवेल का लफ्ज आया अल्लाह, मैं तो उसकी तफसीर पढ़ा, मैं तो तफसीर उस्मानी पढ़ रहा था, फिर मैंने कहा चलो भाई इसकी तफसीर मारिफ़ुल कुरान देखते हैं। यानी जब जन्नत में जाएंगे अल्लाह ताला जन्नत में जाने से पहले दिलों में जो कदूरतें हैं वो निकाल देंगे, किसी के दिल में कोई कदूरत नहीं रहेगी, शेख मुरीद की है उस्ताद शागिर्द की है, हत्ता के और भी करीब करीब रिश्तेदारों की होती है मगर लोग सह के जिंदगी गुजार रहे होते हैं तो वो सब निकाल देंगे। और उसमें ये होगा पुल सरात पे से जब गुजर रहे होंगे, मारिफ़ कुरान मुफ्ती शफी साहब ने लिखा है, तो उससे पहले ये होगा कि बाकायदा जिसने जिसका हक मारा होगा उसका हक अल्लाह दिलवाएंगे, जिसको मारा गाली दी बदतमीजी की मालीम हुकूक किए, अब वहां तो कोई करेंसी है नहीं, तो वहां ये होगा कि जैसे अगर मैंने किसी को मारा है तो जिसको मारा है तो मेरी नेकियां सारी उसको दे दी जाएंगी, फिर जब नेकियां खत्म हो जाएंगी तो ये होगा कि उसके गुनाह मेरे ऊपर लाद दिए जाएंगे। सबसे बड़ा मुफलिस वो शख्स होगा, वहां पे करेंसी कोई नहीं चलेगी। हुकूकुल इबाद का मामला बहुत खतरनाक है, फौरन पैर पकड़ के माफी मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला से माफी मांगे और पैर पकड़ के माफी मांगे और शेख को बिल्कुल फाइल क्लियर करके दे, इतने जिंदगी भर सता रखा है आह और आह, ये कोई बात है जिंदगी गुजारने का तरीका है। सीखा क्या फिर शेख से करीब रह के, सफर में भी साथ चलना है जनाब, जबान भी बड़बड़ चल रही है और तलाक की धमकियां भी चल रही है, लानत मलामत भी चल रही है, ये कोई तरीका है जिंदगी गुजारने का। समझते हैं कि भाई बस ऐसे ही चलाते रहो, भाई औरत भी तो औरत है, कहां तक वो किसको कहेगी ना, उसके वो अपना घर, असमी लिखा है औरत अपना घर बार छोड़ के सब कुछ छोड़ छोड़ के शौहर के लिए वक्फ हो जाती है। पहले तो डॉल थी, जब हुसन की वजह से शादी की, पैसे की वजह से शादी की, डॉल थी, फिर एडॉल, अब पेनाडॉल हो गई। अब निभा करके दिखाओ, अब वफा करके दिखाओ ना, जब बूढ़ी हो गई, जब बच्चे हो गए, जब तू मैं कर रही है तो करने दो। हजरत ने बड़ी अच्छी बात कही, औरत टेढ़ी पसली से पैदा हुई, हदीस में आता है, अपनी अन्ना को हम फना करें, टेढ़ी का भी सीधी ही हो सकती, आपकी टेढ़ी पसली, आपकी या मेरी इनकी टेढ़ी पसली को सीधी कर सकता है? कोई सीधी नहीं कर सकता, वो टेढ़ी ही रहेगी, वो सीधी नहीं हो सकती। उसको नरमी से समझाए, प्यार से समझाए, और तू मैं करती है बर्दाश्त करें, आप क्यों तू मैं करते हैं? औरत थोड़ी बनाया अल्लाह ने, पूरी अकल वाला मर्द को बनाया है, बर्दाश्त करे, उसकी कोताहियों को दरगुजर करे, नरमी से पेश आए। इतनी दफा समझाया, पूरा बयान ही इसी पर होता है, फिर भी वही हरकतें। इसका मतलब कोई तकब्बुर भरा हुआ, और तकब्बुर बड़ी मुश्किल से निकलता है। उसके लिए तरीका है कि आप जो है, आप चाहते हैं कि आप मर जाएं, उससे बेहतर है, एक साहब ने कल ही फोन किया, मैं दिल चाहता है खुद कुछ आग लगा लूं अपने आप। मैंने कहा आग क्यों लगा लें, आप ये चाहते हो मर जाओ ना, आ जाओ खानकाह में आके मर जाओ, सब दुनिया छोड़ के आ जाओ खानकाह में, 10 दिन रहो, जितना नुकसान होगा मैं आपका अवेल करूंगा, आप आके खानकाह रहें, ताकि घर को जहन्नम जो बनाया हुआ है उसको सही करें आप। तलाक तलाक ही लगा रखी है भाई, शोर मचा रखा है घर में। मैंने दोनों को फोन मिलाया और उनको समझाया मैंने कि कोई तरीका है गुजारने का। कितने लोग बदनामी, हमारी बदनामी का सबब बन रहे हैं कि भाई ये कमाल के मरीज हैं, जबकि उनको ये नहीं पता कि हम तो यही सिखाते हैं भाई, खुश अखलाकी से रहो, बीवी की खताओं को माफ करो। कितनी दफा बताया कि हजरत ने मुझसे फरमाया था कि 1,00,000 खताएं बीवी की, 1,00,000 खताएं माफ करो, क्यों नहीं करते हम लोग, क्यों नहीं सुनते हैं कान से, दिल के कानों से? वो जो भी बोले बोलती रहे, आप अपनी इसलाह कराए ना कि भाई वो उस तरह बदतमीजी करती है, तो ये आप भी उसकी इसलाह कर रहे हैं। शेख कितना भी कह लें, मियाँ बीवी की जो बातें हैं, खुद कोशिश करें उसको करने की। शैतान तो तख्त लगा के खुश होता है, हम तो हदीसें सुनाएंगे कि भाई मैंने मियाँ बीवी में झगड़े करा दिए। अल्लाह ताला बहरहाल हिदायत की बातें हैं, हमें तौफीक दे अपनी रहमत से कि हम इस पर अमल करें। शेख तो हजरत वाला चले गए, हजरत मीसा रहमतुल्लाह अलैह चले गए, मौजूदा मुर्शिद हमारे हैं, इतने बड़े शेख हैं माशाल्लाह, दुनिया भर से खतूत आ रहे हैं, जाहिर सी बात है जिंदगी मसरूफ है, मगर माशाल्लाह फिर भी वक्त देते हैं। बांग्लादेश वाले रो रहे हैं हम लोग, अल्लाह वाले तो रहेंगे क़यामत तक, सादिकीन का हुक्म है, क़यामत तक रहेंगे उनके फैज़ याफ्ता, उनके सोहबत याफ्ता, अपने घर को जन्नत बनाएं। क्यों ऐसी बनाते हैं, ये सोचें हम उम्मती किसके हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होके दाढ़ी टोपी रख के इतना वक्त गुजारने के शेख के साथ फिर ऐसी हरकतें करना। शैतान सवार हो गया तो शैतानी की अपनी इसलाह करवा लें, बतकल्लुफ नरमी करें, सबसे पहले तो माफ़ी मांग लें, क्या इसमें अपनी अनानियत मिटाएं, पैर पकड़ के बीवी के माफ़ी मांगे, मैंने बहुत कोताहियां की, सास ससुर से माफ़ी मांगे, अपने खानदान वालों से माफ़ी मांगे, फिर देखें कैसा नूर दिल में आता है, एहसास होगा। पहले भी मैंने इस पर परसों पिछले 2-3 हफ्ते पहले बयान किया था, किसी बड़े शख्स से ऐसी हरकत हो गई है तो अब फिर उसको एहसास भी होना चाहिए कि मुझसे कितनी बड़ी कोताही हो गई, मैं कैसे जिंदगी गुजार रहा हूँ। जो चाहा मुंह में आया बख दिया, अल्लाह माफ़ फरमाए। लानत मलामत करने वाले के बारे में हदीस में क्या आता है, जबान के 20 गुना है। किसी और मर्द को या औरत को लानत करना कितनी बड़ी गुना है, अल्लाह ताला हम पे लानत फरमाए तो कैसा लगेगा बताइए जरा। जो हम अपने लिए चाहते हैं अल्लाह से मामला, मखलूक के साथ भी वही करें, ये कोई तरीका है जिंदगी गुजारने का? सीखा क्यों नहीं शेख से ये सब चीजें, आके हंस दिए, मुस्कुरा दिए, खाना खा लिया, सफर कर लिया, ये सब चीजें सीखी नहीं, अल्लाह माफ फरमाए। बस आह निकल जाती है ना, क्या कर सकते हैं, उसका इलाज यही, तौबा करें, माफी मांगे, शेख के पास आपके अपनी इसलाह करवाए। कुछ वक्त हजरत शाह फरोज़ मोहम्मद साहब के पास रहे, उनके अखलाक देखे, मशवरा करें। ये नहीं कि कमाल के पास वक्त नहीं है, मेरे पास वक्त है, आप मुझसे वक्त लेंगे, वक्त दूंगा, फोन पे, ईमेल पे, खत पे, बनफ्स नफीस खुद भी हाजिर हो जाऊंगा, हम तो खादिम हैं, दुनिया से सारा वक्त निकाल के आपके लिए वक्त करेंगे, हम सवाल के जवाब देंगे, जवाब क्या देंगे, आपको समझाएंगे। शेख सवालों के लिए तो नहीं होता, समझा देता है। मुरीद के दिल में शेख की एक अजमत होती है, एक मोहब्बत होती है, उसकी बात गौर से सुनता है, भाई ठीक है शेख कह रहा है। इसलिए एक नायब भेजा जाता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में फर्जा फरमा गए, वो नायब रसूल होते हैं, वो बड़ों का एतमाद होता है, चलो भाई शेख कह रहे हैं, हाँ दिल तो नहीं चाह रहा मगर माफी मांग लेते हैं, शेख को खुश कर देते हैं। शेख को खुश करना क्या, अल्लाह को खुश करना, यानी बतकल्लू भी अगर इस तरह माफी मांग लेगा इंसान शेख को खुश करने के लिए, ये भी इबादत ही शामिल हो जाएगा, क्योंकि इंसान को ऐसी आदत है गुस्सा करने की, उसकी इसलाह करवा नहीं रहा, चिपक गई है। गुस्सा कोई बुरा थोड़ी है, खत्म थोड़ी होगा गुस्सा, उसकी इसलाह करवाएं, हर वक्त नाक पे गुस्सा चढ़ावाएं, ये कोई तरीका है? औरतों की तरह कमरा बंद करके बैठ गए, नाराज होके बैठ गए, तीन दिन से ज्यादा पता है ताल्लुक करना कितना बड़ा गुनाह है, एहसास ही नहीं है इन हदीसों का। ये किसके लिए है? सिर्फ बदनजरी से बचना गुनाह है? ये कोई बात है? दोस्तों में हंसेंगे बोलेंगे, बीवी को वक्त नहीं देंगे, पूरी पूरी रात घर से बाहर रहेंगे और बीवी को वक्त नहीं देंगे, अपने काम के लिए आ जाएंगे बस, अल्लाह माफ करना। जिस गाल पे बोसा देते हैं रात को उसी गाल पे थप्पड़ मार रहे हैं, हजरत ने ये बात फरमाई, ये कोई बात है? बहुत ही अफसोस की बात है। अल्लाह ताला बहरहाल, ये मजलिसें इसलिए नहीं होती कि मैं बस किताबें पढ़ के चले जाऊं और बस हा हा हो गई, इस तरह नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। अल्लाह, वैसे ही इतने फितने बरस रहे, इतने इख्तलाफात पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, कैसे कैसे हालात हैं। शैतान सिर्फ छोटी सी बात को लेकर बैठ गया है और हमारे घर को जहन्नम बनाने की फिक्र कर रहा है। हम जन्नत बनाएं? हम शैतान को मात कर देंगे? मौजूदा मुर्शिद से बैठ हूँ तो मेरी बहुत सी बातें लोग बताते हैं, घर वाले भी, वालदेन भी, सब चीज़ें, मुरीदीन भी, कराची वाले, हैदराबाद वाले, टंडोजाम वाले, अलहमदा कोई गम नहीं होता। मैंने कहा अच्छा है, हम तो शेख के पास आए ही इसलिए हैं, ऐ शेख आप हमें जैसे चाहें लेके चले, मारें धाड़ें, आप हमें डांटें, हम आपके मुरीद हैं। मुरीद वो होता है जो अपनी सब कुछ इरादे विरादे सब शेख को दे चुका हो। ऐ शेख हम हाजिर हैं, मुझे पता नहीं होता किस किस ने बताया है, बस ठीक है, कोई मसला नहीं, दिल में उनके लिए कुछ नहीं, उनके लिए वैसे ही सलाम दो, उनसे वैसे ही माशाल्लाह, चाहे घर से किसी ने बताया चाहे मतलब अच्छी बात है, क्योंकि हम तो सुधर नहीं रहे थे, ये तो उनके दिल में अल्लाह ने डाला तो उन्होंने शेख को बता दिया। शेख कोई जाहिर सी बात है कि शेख को कष्ट तो होता नहीं है, न शेख हमारे मशाइख कभी कष्ट भी हो जाता है, न हमारे मशाइख जो है इन सब चीज़ों पर ज़्यादा वो करते हैं हकीकत, और फरमाते हैं कि एक तरफ की भी हम सुनते हैं, दोनों तरफ की सुनते हैं, मगर अगर एक तरफ की सुन भी ली है और नसीहतें की हैं वो तो फायदा देती है। ये बातें तो मेरे लिए भी हैं, आपके लिए भी, इनके लिए भी, इनके लिए भी, सबके लिए बातें हैं। अखलाक से रहने की बातें तो सबके लिए हैं, ये थोड़ी बोलना चाहिए अच्छा आपने कुछ बता दिया, अरे ये बोलने की जरूरत क्या है, बता दिया तो बता दिया, इसमें क्या है? अच्छा है कि आपने मुझे बता दिया, क्योंकि मैं तो सुधर नहीं रहा था, मैं तो बिल्कुल पटरी से बाहर निकल गया था, मुझे जाना था मक्का मुकर्रमा, मैं तो जा रहा हूँ लंदन की तरफ, ये अच्छा कि आपने बता दिया, वरना तो बिल्कुल पटरी से उतर जाता। मौका भी अच्छा है, हजरत फरमाया जो मुरीद काबू में नहीं आ रहा हूं तो बयान में कह दिया जाए, जाना हो जाए, आना हो आए, मगर बावफा मुरीद जाता नहीं है। हजरत ने कितने लोगों को बाहर निकाला और फरमाया कि आप आएंगे मजलिस में, कोने पे वहां बैठेंगे, जब तक माँ बाप से माफी नहीं मांगेंगे आप मुझे शक्ल में दिखाइएगा, माफी मांग के आ जाए फिर शक्ल दिखा दें, क्योंकि आप लोग खानकाह को बदनाम करने का सबब बन रहे हैं, बुरे अखलाक से पेश आके अल्लाह माफ फरमाए। कुछ आज समझ में नहीं आया था क्या बयान करूं, तो सबसे पहले मैंने सोचा कि हजरत वाला की बातें बताता हूँ कि अपने शेख पे वो कैसे फिदा होते थे। तकलीफ तो शेख को हो रही होगी जिसके लिए बयान हो रहा है, मगर ये बयान तो मेरे लिए भी है, तकलीफ होनी भी चाहिए, जाहिर सी बात है, नफ्स को चोट लगेगी तो अल्लाह वाले बनेंगे, ऐसे थोड़ी होता, आसान थोड़ी है अल्लाह वाला बनना। दाढ़ी टोपी तो आ जाती है चार महीने के अंदर, मगर मरते दम तक इसलाह है, क्योंकि नफ्स कभी भी दोबारा गुनाह वो लौट कर आ जाता है, चाहे वो शहवत का हो, चाहे गुस्से का हो, चाहे बदनजरी का हो, चाहे सिगरेट का हो, चाहे और किसी चीज का गुनाह हो, वो दोबारा लौट कर आ जाता है। अल्लाह, या ऐसी तरह एक साहब है मोबाइल में घुस गए, खूब बदनजरियां की, सारे हराम मजे ले लिए, फिर मुझे लिख रहे हैं कि भाई मैंने इतना वो कर लिया, क्या कह सकते हैं? मैंने कहा आपने सब जला, सारे पौधे जला दिए, सब खाद पानी दिया था, सब जला के राख कर दिया, अब आप 20 रकात नफिल पढ़ें, इतने हजार रुपये सदकात करें और ये रोजा रखें, फिर आप मुझसे बात कीजिएगा, वरना आप जाएं किसी बकरे लेने जाएं। नफ्स को सजा मिलेगी तो सुधरेगा, ये ऐसे थोड़ी होता। हजरत वाला की बात चल रही थी, जब नस को आपने इतने हराम मजे दिए हैं और सबको जला के खाक कर दिया तो उसको सजा भी दो। हमें शेख से वफादारी करनी है, हमें बस ये मुरीदों की लाइनें थोड़ी लगानी है।